हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारू अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4 से आगे। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं तो योगारूढ़ हूं और मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है और मैं तो केवल ध्यान करूंगा। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि व्यक्ति किस चेतना में, मन की किस अवस्था में उसको योगारूढ़ बोला जाएगा। उसके अंदर, उसके मन में भोग की वासनाओं का उदय ही नहीं होता है। और जब हम भोग की वासनाओं का से ग्रसित होते हैं तो भोग करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनमें भी हमारी आसक्ति होती है। जैसे शराब पीना, शराब के प्रति आसक्ति एक इच्छा है और शराब पीने के कार्य, ये एक प्रकार का कार्य है। तो ये दोनों ही कार्य, एक है शराब पीने की इच्छा, दूसरा शराब पीने का कार्य, इस प्रकार की आसक्ति से एक योगी पूरी तरह से निवृत्त रहता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं और बहुत सारे भोगों के तरीके होते हैं, उन सभी इच्छाओं से वो अनासक्त होता है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के प्रति भी वो एक योगारूढ़ योगी जो है वो अनासक्त होता है। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना मृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने के लिए रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे युक्त वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। उदाहरण के लिए बड़े सिद्धांत हम समझेंगे। एक भक्त, जो शुद्ध भक्त है, वो हर प्रकार की भौतिक इच्छा से विरत हो जाता है। उसे कोई इच्छा नहीं होती जगत को भोगने की, वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है और कृष्ण की सेवा में प्राप्त आनंद से वो पूरी तरह से तृप्त रहता है। अब इस सेवा के लिए भगवान उसको कौन सी परिस्थिति में डालते हैं, उससे एक शुद्ध भक्त पूरी तरह से निरपेक्ष रहता है। जैसे देखिए, युधिष्ठिर महाराज जी जंगल में गए, भगवान के योजना थी, भगवान का अरेंजमेंट था, उसके वजह से वो जंगल में गए तो कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। कहते कितने खुश हैं हम लोग, यहाँ पे हैं हम, ऋषि मुनियों से भगवान का विवरण सुन पा रहे हैं, पुराणों की कथा सुन पा रहे हैं। और जब उनको राज्य प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, 18 दिन के अंदर, 18 दिन से पहले वो जंगल में रह रहे थे और 18 दिन के बाद पूरे विश्व के राजा थे। तो ये भगवान का उन पर अनुग्रह था। दोनों ही सिचुएशन में अपने उस अनुग्रह को अनुभव कर रहे थे और दोनों ही परिस्थितियों में वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। इंद्रिय भोग से वो पूरी तरह से विरक्त थे। तो हम ये उनके उदाहरण से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए भक्त किसी भी बाह्य सुविधा को स्वीकार कर सकता है या इसको त्याग कर सकता है। तो भक्त जो है, एक शुद्ध भक्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से पूरी तरह से विरत रहता है, ऊपर रहता है, तो उसको कोई कर्म त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्म सारे केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। उद्धेरदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बहुत अच्छी बात। मन की सहायता से व्यक्ति अपना उद्धार कैसे करता है? जब हम भगवान कृष्ण की सेवा अपनी इंद्रियों से करते हैं तो हमारी चेतना की सफाई होती है, हम भगवान की तरफ आगे और बढ़ जाते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? मन की सहायता से करते हैं। मन ही सारी इंद्रियों को संचालित करता है और हम अपनी इंद्रियों से सेवा करते हैं तो उसमें मन का लगा रहना आवश्यक है। अब यही मन अगर हम इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं या मन से अपने इंद्रिय को इस प्रकार से संचालित करते हैं कि वो इंद्रिय भोग में लगे, तो फिर व्यक्ति को भौतिक चेतना का शिकार होना पड़ता है और जगत में वो और बंध जाता है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि मन जो है वो जीवात्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन तथा आत्मा होता है, मतलब अलग अलग प्रसंगों में आत्मा का अर्थ अलग अलग लिया जाता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। हमने पहले भी बताया था योग इंद्रिय संयम, या योग में इंद्रियों का संयम होता है और उसमें सबसे प्रमुख इंद्रिय है हमारा मन। क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। कैसे होता है? इंद्रिय और मन लगातार भोगों की तरफ जाते रहते हैं, एक के बाद एक मन इन विचारों में फंसा रहता है कि कैसे हमें अगला भोग प्राप्त होगा, और इस प्रकार से हम लोग अज्ञान के दलदल में, अपने स्वरूप की अज्ञानता में फंस जाते हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्यांकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो समझिए इसका अर्थ क्या है। मिथ्या अहंकार के कारण मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझता हूँ, तो इनको जिस चीज से शरीर को सुख मिलता है उसका प्रबंधन करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए मन लगा रहता है और मन के द्वारा इंद्रियां भी लगी रहती हैं। अतः मन को, और इस प्रकार से हम लोग प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, प्रकृति की वस्तुओं का, जो भौतिक प्रकृति है उसके हमारे आसपास, उन वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। कैसे प्रशिक्षित करेंगे हम? ज्ञान के द्वारा, भगवद गीता को सुनकर के, भागवतम को सुनकर के, धीरे धीरे हमारी बुद्धि हमको प्राप्त होती है कि जगत की वस्तुएं हमको सुख नहीं दे सकती हैं, या फिर हमको शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकती हैं। तो मन भले ही मचले बहुत सारी भोग की वासनाओं के द्वारा और हमें प्रेरित करने का प्रयास करे कि आप जाकर के वो भोग करो, तो मन को समझाना चाहिए कि भले ही तुमको आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके इसके बहुत विपरीत परिणाम होंगे और इस जगत में तुम बहुत बन जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में और फंस जाओगे, तो इसमें नहीं जाना चाहिए। मन को बुद्धि के विवेक के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं कि आगे क्या परिणाम होगा। मन एक बच्चे की तरह होता है जो आसक्त रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसकी हर बात को स्वीकार करना के लिए हम बाध्य नहीं है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा हमने अभी कर ली। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। अगर आपको याद हो, हमने पहले के श्लोकों में चर्चा किया था, भगवान बता रहे थे कि इंद्रिय भोग ही हमारे दुखों का कारण है। तो जितना व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट होगा उतनी ही उसकी ये चेतना और गहरी होती चली जाएगी कि वो शरीर है, और उतनी ही मात्रा में वो अपने स्वरूप से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में रखना चाहिए, मतलब मन में हमेशा ये भावना रहनी चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और ये ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए कि हर समय हम कृष्ण की सेवा में कैसे लगे रहें, ये सीनियर वैष्णवों से सीखना चाहिए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए, मतलब बिना मन को नियंत्रित किए हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मन को नियंत्रित किए बिना हम कभी सुखी नहीं रह सकते। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तय निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। मन बंधन का कारण कैसे है, मन में जो भौतिक इच्छाएं हैं, काश मुझे वो मिल जाता, काश वो मुझे ये मिल जाता, हाँ ये बड़ा अच्छा है, वो मिल जाता, ये हो जाता, तो इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं। लेकिन यही मन अगर कृष्ण की सेवा में लग जाए, मैं कृष्ण की सेवा ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, भले ही मैं सेवा कर भी ना पाए, लेकिन खाली मन में इस प्रकार की इच्छा रहे, सेवोन्मुख मन हो जाए हमारा, तो हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेंगे। एक श्लोक और देखेंगे जो इसी से मतलब जुड़ा हुआ है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक बात एक ब्राह्मण बोलते हैं। वो कहते हैं अवंती ब्राह्मण कि इस जगत में हमारा कोई शत्रु नहीं है अपितु हमारे मन को छोड़ करके, हमारे मन को छोड़ करके जगत में कोई हमारा शत्रु नहीं है। और अद्भुत बात है कि प्रायः जगत में लोग सारे शत्रुओं से युद्ध करने का प्रयास करते हैं लेकिन अपने मन रूपी शत्रु को बिल्कुल नहीं पहचानते बल्कि उसको अपना मित्र मान के बैठे हैं। मन जब भोगों में जाता है तो हम सोचते हैं ओ ये तो बहुत अच्छी बात है और ये मन तो बहुत अच्छे कार्य हमको बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करने लगते हैं हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि इस प्रकार से हमारा मन हमें हमेशा नरक की तरफ लेके जाने के लिए प्रयास करता रहता है। तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। और ये जो उनका तरीका होता है वो यंत्रवत होता है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि के द्वारा। यम नियम, मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्यों परम शत्रु की तरह के संग निवास कर रहा है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हमारा भौतिक जीवन कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये जीवन खत्म होगा उसके बाद फिर दूसरा जीवन शुरू होगा, उसके बाद फिर जीवन शुरू होगा। तो अगर हमने अपने इस मन के वेग को डिटेक्ट करना पकड़ना सीखा नहीं कि ये केवल मन की इच्छाएं हैं, इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है, अगर हमने ये चीज नहीं सीखी तो फिर मन हमको एक जगह से दूसरी जगह में घुमाता लेके चला जाएगा। हम सोचेंगे ये परिस्थिति अच्छी है, हाँ ये अभी, फिर मन असंतुष्ट हो गया फिर दूसरी जगह चला जाएगा। मन का ये स्वभाव ही होता है भौतिक मन का कि वो असंतुष्ट रहता है, कितनी भी भौतिक परिस्थितियां हो उसमें संतुष्ट रहता है। तो व्यक्ति को संतोष करके सीखना चाहिए और ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा बड़ी आसानी से होने लगता है। जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जब करता है तो धीरे धीरे अपने आप ही वो उसका मन शुद्ध हो जाता है और वो संतोष करने लगता है कि जीवन जीने के लिए मुझे इतनी अधिक की आवश्यकता नहीं है, मैं इतनी अधिक मेहनत क्यों करूं या मैं दूसरों को दुख क्यों दूं या मैं इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगूं। तो ये जो भक्ति जो भगवद गीता के स्टैंडर्ड बताए गए यहाँ पे, ये हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा व्यक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ये मन को जीतने के लिए का बड़ा आसान तरीका यही है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें, ध्यान पूर्वक से सुनने का प्रयास करें और मन अपने आप ही शुद्ध होता चला जाएगा, भोग की वासनाएं भी उससे मुक्त हो जाएंगी, उससे निकल जाएंगी। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उसे भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो ये होता कैसे है? जब मन अशुद्ध है तो व्यक्ति अपनी स्वेच्छाचरण करता है, अब जो मन में आता है उसे करता है और लोग बोलते भी हैं आज मेरा मन में ये कर रहा है कि मैं ये करूं, आज मेरे मन में ये कर रहा है कि मैं वो करूं। लेकिन यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि जब मन पर विजय प्राप्त होती है, मन शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करता है। और ये आज्ञा हमको कैसे मालूम चलती है? शास्त्र के द्वारा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आप देखिए कि कोई व्यक्ति कहेगा मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है तो ये एक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, लेकिन इसके विपरीत एक भक्त क्या सोचेगा, अरे मेरा इच्छा कर रही है कि मैं भगवान के लिए कुछ भोग बनाऊं और उसको भगवान का भोग लगाऊं उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करूं। तो आप देख सकते हैं कि क्रिया में अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि मन शुद्ध हो गया है, आत्मा स्वीकार कर रही है कि वो भगवान का दास है और भगवान की सेवा के लिए उन्मुख हो रही है, तो वही मन उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो यही बात मैं को समझा रहा था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता भावना भावित होता है हरे कृष्ण मंत्र का जप करके भागवत कथा को सुन करके, वो स्वयं ही भगवान के प्रति उन्मुख हो जाता है, भगवान की सेवा के लिए वो तत्पर हो जाता है। उसको अलग से कोई योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है और भगवान तो उसके सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। विग्रह के रूप में वो भगवान की सेवा कर सकता है, नाम के रूप में सेवा कर सकता है, प्रचार के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा अपने मन को भगवान में लगा सकता है और अपने इस मन रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।